हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आज जैसे ही अबीर अपने कमरे में गया, उसे एक अलग ही एहसास हुआ। हुआ ये था कि अबीर ने ज़ोया को बाईं ओर का कमरा बताया था, लेकिन वो अनजाने में दाहिनी ओर के कमरे में चली गई थी, जो किसी और का नहीं बल्कि अबीर राठौर का कमरा था। ज़ोया आराम से अबीर के बाथरूम में शावर ले रही थी, और शावर लेने के बाद उसने अबीर की एक शर्ट पहन ली थी। उसने अबीर की शर्ट पहनी हुई थी, उसे इस बात का एहसास नहीं था। एक तो वो बार बार अरहम के बारे में सोच रही थी, दूसरा आज अस्पताल में अबीर ने उसके लिए जो कुछ किया था वो सब घूम फिरकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ज़ोया मन ही मन अपना इरादा मजबूत कर रही थी कि अगर अरहम इस बार उसके सामने आया तो वो उसका ऐसा बुरा हाल करेगी जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ ज्यादतियों की शुरुआत अरहम ने ही की थी। आज उसकी जो भी हालत थी वो सिर्फ और सिर्फ अरहम की ही वजह से थी। अरहम से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, शायद ही इतनी नफरत वो अरमान या राजवीर से कर पाती। इन तीनों मर्दों ने मिलकर उसकी जिंदगी की पूरी ऐसी तैसी कर दी थी। क्या कुछ नहीं सहा था उसने, लेकिन हर सिचुएशन का सामना उसने बड़ी ही हिम्मत से किया था। एक बार तो जिंदगी से हार कर उसने खुद को जान तक लेने की कोशिश की थी। एक नहीं, दो दो बार उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसे मरने भी नहीं दिया था। लेकिन अब वो अपना एक अलग रास्ता बना चुकी थी। उसने सोच लिया था कि ये जो औरतों की इज्जत के दुश्मन हैं, जैसे अरहम, अरमान और राजवीर जैसे लोग, इन लोगों को वो चुन चुन कर मारेगी। उन्हें वो एक औरत की ताकत का एहसास कराएगी, उन्हें बताएगी कि अगर एक औरत अपने पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। वो ज़ोया न जाने कितनी ही उधेड़बुन में घूम थी, और उसने अबीर की शर्ट उल्टी सीधी पहनी और जाकर अबीर के शानदार बिस्तर पर लेट गई। वो काफी थक चुकी थी, सो बिस्तर पर लेटते ही वो गहरी नींद में सो गई। वहीं अबीर जैसे ही कमरे में आया, उसे आज एक अलग तरह की भीनी भीनी सी खुशबू अपने कमरे से आने लगी थी। उसे वो खुशबू बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वो अबीर भी काफी थक चुका था, उसने अपने कमरे की लाइट जलाने की जहमत नहीं की थी, और वो भी फटाफट से बाथरूम में घुस गया। उस बाथरूम में अभी भी ज़ोया की खुशबू थी। अबीर उस खुशबू को अपने अंदर समाता हुआ शावर ले रहा था, और शावर लेते लेते उसे ज़ोया की याद आने लगी थी। और आज अस्पताल में जो वे एक दूसरे के इतने करीब थे, वो सोचते ही अबीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। वो पूरे 10 मिनट अच्छे से शावर लेने के बाद अबीर बाथरूम से बाहर आया, और उसने अपनी अलमारी में से एक लोअर निकालकर पहन लिया। उसे ऊपर कुछ भी पहनकर सोने की आदत नहीं थी, वो केवल एक लोअर पहनकर ही सोता था। अबीर जो कि थता हुआ था, वो भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया था, और जैसे ही उसने करवट ली, उसका हाथ सीधा ज़ोया की छाती पर पड़ गया था। अबीर को एक अलग सा एहसास हुआ, और उसने उसे अनदेखा कर दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा था। वहीं ज़ोया एकदम गहरी नींद में थी। अबीर का हाथ उसके किस हिस्से पर रखा हुआ था, उसे कोई एहसास नहीं था। वहीं अबीर को वो हिस्सा अपने हाथ के नीचे काफी नर्म लगा था, और उसने अपनी आंखें बंद करके वहां धीरे धीरे अपना हाथ वहां पर दबाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उसने थोड़ा तेज दबाव बनाया, ज़ोया एक झटके से ही आंख खोल गई, और वो चिल्लाकर उठकर बैठ गई। लाइट ऑन! ज़ोया के चिल्लाते ही अबीर ने भी एकदम से अपनी आंखें खोल ली और बोला। उसके इतना कहते ही उसका पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अबीर ने एक नज़र अपने हाथ को देखा, और फिर ज़ोया को जल्दी से अपना हाथ उसकी छाती पर से हटा लिया, और वो थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गया। और ज़ोया तो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। इस वक्त वो एकदम गुस्से से भर गई थी, और तेज आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ोया काफी तेज चीखते हुए बोली थी। अबीर का कमरा साउंड प्रूफ था, उसके कमरे की आवाज बाहर नहीं जाती थी, लेकिन बाहर की आवाज अंदर जरूर आती थी। अबीर ज़ोया को कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था, वो तो उस वक्त ज़ोया को निहारने में व्यस्त था। ज़ोया ने गलती से अबीर का एक हाफ कुर्ता पहन लिया था, जो ज़ोया को घुटनों से ऊपर तक आ रहा था, और उसकी बांह पूरी थी, लेकिन उसका गला ज़ोया को काफी बड़ा आया था, जिसकी वजह से ज़ोया की क्लीवेज साफ दिखाई दे रहे थे, और ऊपर उसके बाल अभी गीरे थे क्योंकि शावर लेने के बाद वो ऐसे ही लेट गई थी। अबीर को ज़ोया एक जीती जागती कयामत नजर आ रही थी। ज़ोया न जाने अबीर को क्या क्या बोल रही थी, लेकिन अबीर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ज़ोया की सारी बातें अबीर के सर से ऊपर से जा रही थीं। ज़ोया को जब बोलते बोलते काफी देर हो गई और अबीर से उसे कोई जवाब नहीं मिला, तब ज़ोया ने ध्यान से अबीर की नजरों का पीछा किया, और जैसे ही ज़ोया ने एक नजर खुद को देखा तो उसकी एक बार फिर चीख निकल गई। उसे एहसास हो गया कि वो किस हालत में अबीर के सामने खड़ी थी। जोया ने जल्दी से बिस्तर पर पड़ी चादर को खींचकर अपने ऊपर डाल लिया और उसमें लिपट कर बैठ गई। जोया के इस रिएक्शन को देखकर अबीर को हंसी छूट गई और वो उसकी उस हालत का मजा लेने लगा था। अबीर जोया के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था। कितने बुरे हो तुम, तुमने मुझे खुद इस कमरे में भेजा और तुम खुद भी यहाँ चले आए। मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे 10 मीटर की दूरी पर रहना, लेकिन नहीं, उल्टा तुम तो मेरे पास आकर लेट गए और मेरे जोया अबीर को देखकर और चीखी और बोली। जोया ये कहते कहते रुक गई। तब अबीर घुटनों के बल नीचे बैठ गया। जोया उसे देखने लगी। अबीर की मस्क्यूलर बॉडी और सिक्स पैक एब्स और एकदम सुगठित शरीर देखकर जोया कुछ और बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई थी। अबीर का जिस्म एकदम किसी पत्थर की तरह से ठोस था। जोया को पूरा यकीन था कि अगर एक बार कोई इसके ऊपर अगर किसी लोहे से वार किया जाए तो पक्का वो लोहा मुड़ सकता था। जोया, मैंने आपसे कहा था आपका कमरा बाईं ओर है और आप दाहिनी ओर के कमरे में आ गईं और शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने मेरे कपड़े पहने हुए हैं। वैसे अगर आपको मेरे साथ सोना है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अबीर ने जोया को और चढ़ाते हुए कहा था। जोया उस वक्त उसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि सारी गलती उसी की थी। वो गलत कमरे में घुसी थी, सो वो बिस्तर से उठी और बाहर की ओर जाने लगी थी। तब अबीर एकदम से उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, कहाँ जा रही हो तुम? मतलब अपने कमरे में जा रही हूँ। तब जोया बोली, कहाँ जा रही हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस कमरे में रह सकती हो, ये कमरा भी तुम्हारा ही है और मैं भी, अबीर ने अपना सर खुजाते हुए कहा। जोया उसकी बात सुनकर सुलग कर रह गई और एक हाथ से चादर संभालती हुई और दूसरे हाथ से उंगली दिखाते हुए अबीर को बोली, मिस्टर अबीर राठौड़, तुम अपनी हद में रहो, मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे तुम? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, और केवल तुमसे ही नहीं, इस दुनिया के सारे मर्दों से मैं नफरत करती हूँ, जोया ने सुलगते लहजे में कहा था। और वो गुस्से से जैसे ही आगे बढ़ने लगी थी उसकी चादर का एक सिरा उसके हाथ से छूटकर उसके पैरों में आ उलझा और वो गिरने ही वाली थी कि अबीर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसे संभाल नहीं पाया और जोया सीधा अबीर के ऊपर गिर पड़ी और उस चादर ने उन दोनों को कवर कर लिया था। जोया के गीले बाल अबीर के चेहरे को भिगो रहे थे। जोया का पूरा जिस्म अबीर से मिला हुआ था।
अबीर तो उस पल में खोसा गया था। उस वक्त उन दोनों के मन ने न जाने कितने ही एहसासात को जन्म दे दिया था और अब बस कुछ पल की ही देरी थी उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होने में। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों एक दूसरे में समा पाते, अबीर का फोन बज उठा था और दोनों ही एक हसीन ख्वाब से बाहर आ गए थे। वहीं दूसरी ओर अरमान अपने घर यानी ठाकुर मेंशन पहुंच चुका था। उसने देखा कि राजवीर आराम से अरमान की कुर्सी पर बैठकर नाश्ता कर रहा था और जैसे ही उसने अरमान को देखा वो एकदम से उठ खड़ा हुआ था। अरमान तो उस वक्त किसी और ही ख्याल में था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि राजवीर कहाँ बैठा हुआ था कहाँ नहीं। अरमान राजवीर से गले मिला और जाकर हॉल में पड़े सोफे पर बैठ गया और कुछ देर वो इसी तरह से चुप बैठा था। राजवीर उसे हैरत से देखता रहा। फिर कुछ देर बाद अरमान बोला, मेहर आपी कहाँ है? तब राजवीर ने कहा, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसे थोड़ा बुखार है। ओह, मैं जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। लेकिन राजवीर ने उसे रोक दिया और बोला, मैंने उसे अभी नाश्ता खिलाकर दवाई दी है, वो सो रही है, जबकि राजवीर ने ही उसकी तबीयत खराब की थी। पूरा एक घंटा उसने बाथरूम में उसके साथ जी भरकर मनमानी की थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी पूरे ठाकुर मेंशन की जहां उसने मेहर के साथ जबरदस्ती ना की हो, दिन में कम से कम 5 बार और रात में अलग। इन 2 दिनों में राजवीर ने पूरा पूरा फायदा उठाया था जिसकी वजह से मेहर की तबीयत बिगड़ गई थी। वो राजवीर एक पुलिस वाला था। अरमान को इस तरह से सोच में गुम देखकर उसने उससे पूछा था कि क्या हुआ है। तब अरमान ने उसे कहा, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। राजवीर हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, मदद? कैसी मदद? क्या हुआ है? मुझे पूरी बात बताओ। तब अरमान ने जो बताना शुरू किया उसे सुनकर राजवीर के पसीने छूटने लगे थे और जैसे ही उसे ये पता चला कि अरमान ने अनुराधा का मर्डर कर दिया था तो उसके पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। उसकी लाश मेरे लोनावला वाले घर में पड़ी हुई है, वहां से उसकी लाश बरामद कर लो और सब कुछ रफा दफा कर दो। ऐसा कहकर अरमान अपने कमरे में चला गया था और राजवीर उसे हैरानी से जाते हुए देखता रहा था।